भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक को देख रहे हैं। इसमें श्रीमद् भागवतम के संप्रदाय का वर्णन, किस प्रकार से श्रीमद् भागवत संप्रदाय का आरंभ हुआ, उसका वर्णन किया जाएगा। मेरे पीछे कोई भक्त माइक पे बोलिए, पीताम्बर प्रभु कैन चैन। तद इदम ग्राहयामास,
तद इदम ग्राहयामास।
नो द प्रॉब्लम विद द केबल। सुतम आत्मवतां वरम,
सुतम आत्मवतां वरम।
सर्ववेदितिहासानां
सारं समुद्रितम्।
ऑफ कर दीजिए, सम प्रॉब्लम विद द चेंज द माइक केबल। तो अर्थ है तद इदम, इदम मतलब इस भागवत को। भगवान व्यासदेव ने पिछले श्लोक में हमने सुना था कि उन श्रीमद् भागवतम की रचा, उसके बारे में तद उस मतलब इस भागवतम को उसके बाद ग्राह्य मासा ग्रहण कराया, किसको? सुतम। सुतम मतलब अपने बेटे को। और वो बेटा कैसे था? आत्मवताम वरम। आत्मवताम का मतलब हुआ आत्म साक्षात्कारी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ था। सर्ववेति, और वो उसका भागवतम का वर्णन कर रहे हैं, सर्ववेद इतिहासा नाम, सारे वेद और इतिहासों में सारम सारम समुद्रतम, उसके सार का भी सार भाग है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, बहुत इजी है आज के श्लोक, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसे समझ लेना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है ना। चीज अनुवाद, स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर उसे अपने पुत्र को प्रदान किया, और वह सार है भगवान श्री कृष्ण का यश। सारार्थ दर्शनी टीका। जैसे दही के मंथन से अद्भुत नवनीत प्राप्त होता है, नवनीत का मतलब है एकदम सॉफ्ट, नवनीत का मतलब सॉफ्ट मक्खन, वो अमूल बटर नहीं जो फ्रिज में रख दिया जाता है जिसे काटने के लिए चक्कू लगाना पड़ता है, हाँ वैसा नहीं, और उसमें नमक भी होता है अमूल में, उससे लेकर नहीं, एकदम मक्खन, बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन, मलाई नहीं मक्खन, मलाई ठीक मक्खन प्राप्त होता है। उसी प्रकार वेद आदि का आदि के सार का भी सार वस्तुवत ये भागवत स्नेह से अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ग्रहण कराया। ये दही का और मथन का और नवनीत का उदाहरण बड़ा अच्छा है। जैसे कोई पिता अपने बेटे को, प्रिय बेटे को मक्खन केवल देता नहीं है, उसके मुख में रख देता है, होता है ना, अपने हाथ से मुख में रख देते हैं बच्चे को। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो इतिहासों का वेद का सार है, मतलब मक्खन की तरह है, उसको व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी के मुख में रख दिया। वो निश्चित हो रही है, मतलब ये परंपरा में सुखदेव गोस्वामी ने इसे प्राप्त किया है, ऐसा नहीं कि मनगणंत कुछ वो बोल रहे हैं। इससे यह सूचित होता है कि श्रील व्यासदेव के वेद आदि का मंथन सफल हो गया। सफल क्यों हो गया? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इसको प्राप्त किए, बड़े खुश हुए, मतलब कोई मक्खन निकाला गया है तो मक्खन मक्खन का प्रयोजन है कि कोई इसको आस्वादन करे, तो वो सोच रहे थे कि कोई भक्त है, कोई भक्त हो, श्रेष्ठ भक्त हो तो ही वह आस्वादन कर सकता है, तो सुखदेव गोस्वामी को आस्वादन करा करके उनका जो है मंथन सफल हो गया। ये बोल आत्मवताम वरम अर्थात आत्म साक्षात्कारी व्यक्तियों में श्रेष्ठ होते हुए भी स्वाद के आधिक के कारण लोभ से श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसको ग्रहण किया, यह भाव है। यह बहुत सुंदर अर्थ है। मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कारी पुरुष अर्थात वह हर चीज से निरपेक्ष हो जाता है, उसे जगत में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करता। अपेक्षा मतलब समझते हैं, ये चाहिए, हाँ ये चाहिए, ये हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, ऐसी कोई इच्छा उसकी नहीं होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। तो ऐसी अवस्था में सुखदेव गोस्वामी थे, लेकिन वह भी भागवत की उपेक्षा नहीं कर पाए। महाराज जी बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि सबकी उपेक्षा करने वाले, मतलब निरपेक्ष सुखदेव गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम की उपेक्षा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, क्या कारण था? तो बोले स्वाद के आधिक, इतना सुस्वादु था कि उनको भी आकर्षित करी। उसको खुद बोलते हैं परिनिष्ठोपि निर्गुणे, मैं निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में पूरी तरह परिनिष्ठ था, अच्छा था लगा, अच्छा नहीं मतलब निष्ठा से लगा हुआ था, फिर भी भगवान की लीला को सुना तो ग्रहित चेता, मेरे चित्त को उसने ग्रहित पकड़ लिया सकर। वस्तुतः जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध है उसी के हृदय को भागवत इस प्रकार से आकर्षित करती है। इसीलिए बोला था धन्य, पिछले श्लोक में सुन रहे थे ना कल, कि आप लोग धन्य है, भगवान था आप लोग सर्वज्ञ है रोशनाकादि ऋषि को, क्योंकि आप भागवत सुनना चाहते हैं, भगवान की महिमा को सुनना चाहते हैं। ठीक है, गोस्वामी गिरधर लाल जी की टीका। अब श्रीमद् भागवत के संप्रदाय परंपरा का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात ये श्रीमद् भागवतम परंपरा में प्राप्त की गई है। इसको आप 1.1.2 में भी सीखेंगे, बहुत सुंदर है। सो कहते हैं, सॉरी 1.1.3 में शुकमुकाद द्रव अमृत संयुतम। तो कहते हैं ये पेड़ की शाखा से गिरा है, तो कोई कहेगा अरे पेड़ की शाखा से गिरा है और पका हुआ फल है और जमीन पे गिरा होगा तो फूट जाएगा। कहते हैं नहीं नहीं, शाखा प्रशाखा व्यासदेव जी के द्वारा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। ऐसे कोई बहुत पका हुआ फल है, ऊपर आदमी चढ़ा हुआ है तो वहां से एक दूसरे को पकड़ाते हुए आएगा तो नीचे आपके हाथ में वो फल आएगा। इस प्रकार से तो इसे यह सीखना चाहिए, इसका वो बहुत गंभीर अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवतम को यदि हम परंपरा में स्वीकार नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। मनगणंत व्याख्या करने से कुछ फायदा नहीं होगा। प्रभुपाद जी इस पॉइंट को बहुत गंभीरता से अपने तात्पर्य में रखेंगे, इसको आप कृपया याद रखिएगा। ठीक है ना, भागवतम जब भी स्वीकार करना है प्रॉपर संप्रदाय में, संप्रदाय का अर्थ जानते हैं सम्यक प्रदाया, जो जो सम्यक रूप से अच्छे रूप से कृपा को प्रदान करती है। ये कोई वो जो सांप्रदायिक वाली भावना मत रखिएगा कि तुम मेरे तेरा ये संप्रदाय मेरा वो संप्रदाय हम झगड़ा करें, नहीं। संप्रदाय मतलब जिसमें भगवान की कृपा को यथावत बड़े ठीक प्रकार तरीके से प्रदान किया जाता है, ये उद्देश्य संप्रदाय का। सबसे उत्कृष्ट वस्तु अपने बेटे को दी जाती है यह लोक में प्रसिद्ध है। देखिए अब थोड़ा सा इन्हें चेंज कर दिया कि भाई अच्छी चीज तो अपने बेटे को खिलाते हैं ना। आपको याद है ना कि जब द्रोणाचार्य जी बाण इत्यादि की चलाने की शिक्षा दे रहे थे तो अपने लड़के को क्या नाम था अश्वत्थामा को स्पेशल कुछ दिया करते थे, तो उसके लिए उन्हें योजना भी बनाई थी कि पानी भरने के लिए भेजते थे तो बाकी लोगों को सुराई देते थे और अपने बेटे को घड़ा देते थे तो पानी जल्दी भरता था, वो जल्दी आता था, वो सीख जाता था। पर आप जानते हो अर्जुन ने एक पानी वाला अस्त्र चलाया इससे वो जल्दी भर गया और फिर वो जल्दी आकर उनसे स्पेशल शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो ऐसा होता है, अपने बेटे को अध्यापन कराने के द्वारा श्रील व्यासदेव की दृष्टि से भी श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है ये बोध होता है। मैं थोड़ा मेरा मन कहीं और चला गया, मैं कुछ और सोचने लग गया था। अपने बेटे को अध्यापन कराने के द्वारा शिला व्यासदेव की दृष्टि से भी श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है यह बोध होता। मतलब क्या हुआ, क्योंकि बेटे के प्रति प्रेम है, बेटा भी योग्य है और क्योंकि बेटे को सबसे अच्छा चीज खिलाई जाती है, इस दृष्टि से व्यासदेव जी ने देखा कि सारे शास्त्रों में सबसे अच्छा शास्त्र कौन सा लिखा हूँ भागवत, वह सुखदेव गोस्वामी को दिया, और कुछ शास्त्र नहीं पढ़े सुखदेव गोस्वामी, समझ रहे हैं। यह सभी वेद आदि का सार है। इस कथन के द्वारा श्रीमद् भागवत का लाभ हो जाने पर वेद आदि के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। सना सारम सारम समुद्रतम को बोल रहे हैं कि अब आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, अब और किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसको तो 1.1.2 में कहा किम वा परेरेश्वर, और कौन से शास्त्र सुनने से भगवान हृदय में जाते हैं, अर्थात पढ़ने की जरूरत और नहीं है, श्रीमद् भागवतम को ही पढ़ी। अब देखिए और बड़ा सुंदर कह रहे हैं, तीन वर्णों के उद्धार के लिए वेद हैं। तीन कौन से वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको वेद पढ़ने का अधिकार है। स्त्री शूद्र आदि के उद्धार के लिए इतिहास है, जैसे कि महाभारत, परंतु दोनों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवतम है, अर्थात इससे सभी का उद्धार हो जाता है। समझ में आया आपको, मतलब इसमें कोई अधिकार की जरूरत बात नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, श्रीमद् भागवतम को सुनने की क्या योग्यता है, केवल व्यक्ति को क्रम से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सीधे दशम स्कंध में पहुंच गए, दशम स्कंध को पढ़ने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन भगवान के तत्व को ठीक से समझ करके फिर दशम स्कंध को पढ़े। एक उदाहरण मैंने सुना था एक भक्त से, अच्छा उदाहरण था, कह रहे थे कि भाई दूध बहुत बढ़िया चीज है लेकिन हजम करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए, तो अगर तत्व को ठीक से समझा नहीं तो भगवान की लीला हजम नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा, और प्राय लोग भ्रांत हो जाते हैं भगवान कृष्ण की लीला से। ओके, समझ में आए। तो सभी का उद्धार करने वाली, सभी को श्रीमद् भागवतम पढ़ना सुनना चाहिए। सभी प्रकार से विरक्त जितेंद्रिय और ज्ञानवान सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भी यह ग्रहण किया गया। इसके द्वारा इस भागवत शास्त्र का सभी शास्त्रों से उत्कृष्टता सूचित करने के लिए कह रहे हैं आत्मवताम भरम। समझ में आई ये बात? नहीं सुन रहे? ये कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी विरक्त थे, किसी भी चीज की कोई अपेक्षा नहीं थी। वो केवल गृहस्थ के यहाँ, किसी गृहस्थ के यहाँ केवल थोड़ा सा दूध पीने के लिए रुकते थे, आपको पता हो कुछ, हाँ, गोदोहन के समय भी। और ये भी नहीं कि 2-4-5 लीटर, थोड़ा सा दूध जितना उनको आवश्यक रहता था शरीर चलाने के लिए। जितेंद्रिय, सारी इंद्रिय संयमित थी। नहीं, कोई अगर 2-4 लीटर पीता है, इसके लिए मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ वो पिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब उनको बिल्कुल कोई भूख, शरीर की धर्म से पूरी तरह से परे थे, ठीक है, जितेंद्रिय थे। और क्या, जब उसने कपड़े भी धारण नहीं किए हुए तो फिर वो क्या और किस चीज की अपेक्षा करेगा। नहीं, वैसे इस पे बहुत विनोद हो रहा था कल कि कुछ लोग कपड़े धारण नहीं करते हैं लेकिन आईपैड रहता है उनके पास। कल बात हो रही थी कि भाई ये कैसा वैराग्य है, या कुछ पैसे चाहिए होते, लेकिन उनको वैसे इस प्रकार के भी नहीं थे। सुखदेव को सामने आईपैड लेके घूम रहे हो ऐसा भी नहीं है, पूरी तरह विरक्त थे। यहाँ तक कि आप पढ़ेंगे उनको ये ब्राह्मण दीक्षा हो मेरी, कुछ उसकी भी अपेक्षा नहीं थी, कुछ अपेक्षा नहीं थी। स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं देख रहे थे, इतने महान थे। और ये सब भी आने वाला है, आने वाला है, बहुत सुंदर। ये आप लोग आने वाला है, मतलब कल से तो क्लास नहीं होगा, कल से मंदिर में क्लास होगा, लेकिन हम बीच बीच में क्लास करते रहेंगे। बड़ा ये जो चैप्टर है ना, थर्ड के बाद चौथा चैप्टर तो बहुत सुंदर है कि सुखदेव गोस्वामी बोले क्यों, बोले ही क्यों भागवत, तो किसी से कुछ बोलते नहीं थे, और परिचित महाराज सुने ही क्यों, ये सब प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं, इसको समय मिलेगा तो उसका उत्तर देंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो खैर, तो आप समझ पा रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो निरपेक्ष थे, किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, वह भी भागवत की अपेक्षा किए, भागवत को सुने। और इसे समझ में आना चाहिए कि सभी शास्त्रों में उत्कृष्ट है। सारे शास्त्रों को, सारे अन्य शास्त्रों को सुनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन श्रीमद् भागवतम को नेग्लेक्ट, क्या कहेंगे, तिरस्कार उसका नहीं कर पाया, सुनना ही, सुनते ही गए, सुनते गए। और यहाँ पे भी सुना रहे हैं, क्या नाम से, परीक्षित महाराज को सुनाएंगे, ठीक है। अर्थात सभी ज्ञानियों के मध्य श्रेष्ठ यह अर्थ है, आत्मवताम वर का अर्थ बता रहे हैं वो। तात्पर्य, अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से, अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं, यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं। ये बहुत गंभीर बात है। क्यों गंभीर बात है? अगर भागवत में लिखा है, अगर का मतलब लिखा ही हुआ है कि एक नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तो है, होते हैं, उसमें कुछ संदेह मत कीजिए, संदेह करेंगे तो अपराध है। श्रीमद् भागवत में जो कुछ भी लिखा है पूरा परफेक्ट 100% ट्रुथ है। हमको समझ में नहीं आ रहा, वो हमारी अयोग्यता है, और समझ में कैसे आएगा, नाम नाम और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है, नाम को कैसे समझ सकते हैं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। पुराण में ये नहीं लिखा है कि बस लोगों को ये अर्थवाद, हम लोग खूब चर्चा कर ले, अर्थवाद नहीं करना चाहिए। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं एक तरह से, जो कुछ भी श्रीमद् भागवत में, या फिर कभी कभी लोगों को डाउट होता है, अरे सूर्य तो पास में है, भागवत कह रही सूर्य पास में है, चंद्रमा दूर में है, साइंटिस्ट कुछ और कहते हैं, साइंटिस्ट सब गड़बड़ कहते हैं, जो कुछ लिखा है श्रीमद् भागवत में सत्य लिखा है, ठीक है। ये रिवील्ड नॉलेज है, रिवील्ड नॉलेज मतलब परोक्ष ज्ञान है, उसको प्रकट किया गया है, ठीक है। ये तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित हैं। ये समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि केवल इस पृथ्वी की घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। अब वृत्तासुर की घटना कहाँ हुई, किसी स्वर्ग इत्यादि के स्थान में हुई, बलि महाराज की कथा कहाँ हुई, स्वर्ग में, और ये भी नहीं कि इसी मतलब इसी ब्रह्मा जी के दिन की बात हो। नारद जी की कथा है, ये क्या है, पिछले ब्रह्मा जी के दिन की बात है, या फिर जब सृष्टि की बात आ रही है तो ब्रह्मा जी के पहले दिन की बात आ रही है। तो आप कभी विचार कीजिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं, है ना, और उसमें भी कोई मुख्य मुख्य घटनाएं हुई होंगी, जो सबसे मुख्य सुनी जाने डिस्कस की जाने वाली घटनाएं होंगी उसको श्रील व्यासदेव जी इसमें रख रहे हैं। सार का मतलब तो यही समझ रहे हैं ना, अद्भुत है। ऐसे लोगों को जैसे कि हम यहां तक कि वेद स्तुति पढ़ेंगे दशम दशम स्कंद में, तो वो कहां हो रहा है, वो हो रहा है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जो एक डिस्कशन हुआ वह भी हमको प्राप्त है, सोचिए कितनी बड़ी कृपा है। हमको तो ये भी पता नहीं कि ब्रह्मलोक है कहां पे स्वर्गलोक है कहां पे, लेकिन वह भी हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और भगवान की कितनी अतिशय कृपा है, लैपटॉप में टेलीफोन में ऐसे भी उपलब्ध है कि हम पढ़ सकें, बस एक दुर्भाग्य यह है कि पढ़ते नहीं है। लेकिन शायद ये वह यह नहीं यह जानते नहीं है कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है, अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। ये समझ में आ रहा है, जैसे कि दूध का सागर है, तो कहेंगे दूध का सागर कैसे हो सकता है, अरे कैसे हो सकता है भाई, जो नमक का सागर बना सकता है, नमक के पानी का सागर बना सकता है, वह दूध का सागर नहीं बना सकता। तो कहेगा अरे पर दूध तो फ्रिज में रखना पड़ता होगा, दूध फटेगा नहीं, वो ऐसा दूध नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है, यह एक जगह और भी कहा शराब का सागर, और कौन सा गन्ने के जूस का सागर, हाँ ऐसे है, और मीठे पानी का सागर सभी और इस प्रकार के सागर भी हैं। आप पांचवा स्कंद पढ़ेंगी तो आप देखेंगे इसे विभिन्न प्रकार के सागरों का वर्णन है। तो हमारी इंद्रियों के उसे मेल नहीं खाता, इसका अर्थ ये नहीं कि मतलब श्रद्धा ना रखें, ठीक है। श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त शिष्य मूवमेंट छोड़ दिए थे, वो विश्वास मतलब प्रभुपाद बोल रहे थे कि चंद्रमा पे हम लोग नहीं गए, तो प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा बात बोला कि हो सकता है कि उसे मेरी बात पे विश्वास नहीं हो, लेकिन वह श्रीमद भागवतम की बात पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा था। मतलब ऐसे प्रभुपाद जी का एक वक्तव्य मैंने पढ़ा था उसको, श्रीमद भागवत का वर्णन है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरी इंद्रियां अपूर्ण है कि नहीं। तो जो उसमें तथ्य बताया गया मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये स्वीकार करना चाहिए। और इसका पता बड़ा लिंक है हरि नाम से, जब भगवान का नाम जब करते हैं हृदय शुद्ध होने लगता है, तो सहज रूप से श्रीमद भागवतम में श्रद्धा होती है, सहज। ऐसा नहीं कि आपको इंटेलेक्चुअली सोचना होता है, हाँ सही है ऐसा कहे। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थिति स्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में न तो कोई विचित्रता दिखेगी और न ही वह काल्पनिक लगेंगी, ठीक है ना। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई व्यक्ति शास्त्र पर टिप्पणी कर रहा है यह सोचते हुए कि यह माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी मतलब काल्पनिक है, कभी भी उस चाहे वो कितना भी संस्कृत का स्कॉलर रहो, उसकी उसको पढ़ने से किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। डज इट मेक सेंस। जैसे कि वो एक कैप्सूल है ना, उसे दवा निकाल लीजिए, अब कैप्सूल खाने से कुछ नहीं होगा, देखने में लगेगा वो दवा। तो समझ रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा परंपरा के द्वारा प्राप्त होना चाहिए, तब ठीक से समझ पाए। यस ओके। ये होता है, मेरे महाराज बता रहे थे एक व्यक्ति के बारे में, उसकी प्रवचनों में हजारों लोग आते थे, वो बाइबल का प्रवचन करते थे, और वो महाराज से व्यक्तिगत रूप से मिले और उन्हें बोला महाराज को, महाराज जी, महाराज जी तो नहीं बोला होगा, जो भी बोला हो जिस तरह से संबोधित किया हो स्वामी जी या जब भी, कि मैं इतने लोगों को प्रवचन करता हूं लेकिन मेरी इस शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। तो बोलने में वो बहुत एक्सपर्ट है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो उसका कारण है जीवन में पाप है तभी शास्त्र में श्रद्धा नहीं, ठीक है ना। पुण्य होने से व्यक्ति की श्रद्धा होती है। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है, वन मैंस फूड इज अनदर मैंस पॉइजन। तो जिस प्रकार से आप कहें कि भाई देवता लोग केवल घी पीते हैं, सुना होगा आपने, है ना, तो आप कहेंगे कैसे रह जाएंगे घी पी करके, उनको डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, होता होगा कि नहीं होता होगा, तो ये धारण नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे भी कोई कहे, मैं कहूँ भाई आज आप लोगों के प्रसाद जो है पाँव से पी लीजिएगा, आप खा लीजिएगा, खा सकेंगे आप लोग, लेकिन पेड़ खाते हैं कि नहीं खाते हैं बताइए, पादपा कहते हैं ना उनको, पता है ना, देखते हैं आप। तो हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे इसका मतलब, इसका अर्थ ये तो नहीं कि पेड़ नहीं कर सकते, इस जगत में हम विचित्रता देखते हैं, ठीक है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार ना करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था, ठीक है ना। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शास्त्र तो है ही, कौन कौन लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं इसके द्वारा भी श्रद्धा का कारण बनता है। कोई महान व्यक्ति अगर उसको शास्त्र को पढ़ रहा है, उसको बोल रहा है, उस पर टीका कर रहा है, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में जितनी टीकाएं की गई हैं उस तो फालतू भी हैं, लेकिन प्रामाणिक आचार्यों ने भी जिस तरह से विशद रूप से भागवत पर टीका करी है ऐसी अन्य किसी पुराण पर नहीं की है, तो कुछ कारण रहा होगा ना। आप देखिए दशम स्कंद की टीकाएं बढ़ जाती हैं, बहुत सारी टीकाएं हैं, तो वो भी दिखा देता है कि ये कुछ ये स्कंद कुछ विशेष है, तभी तो इस प्रकार से टीका करी गई है कि नहीं। नहीं तो ऐसे ही उनको अच्छा सोच लेना चाहिए कि टाइपिंग नहीं कर रहे थे, वो कोई टाइपिस्ट भी नहीं था, हाथ से लिख रहे हैं वो, क्या कहते हैं उसकी पत्तों के ऊपर लिख रहे हैं, तो यानी कि वो समझ रहे हैं ना। तो महान व्यक्ति इस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं तो उससे भी समझ लेना चाहिए कि शास्त्र बड़ा उपादेय है, उत्कृष्ट है, जैसे कि हम यहाँ सुखदेव गोस्वामी के संबंध में सीख रहे हैं। वैसे ही हम लोग परीक्षित महाराज के संबंध में देख सकते हैं, पूरे विश्व का राजा, पूरे विश्व का राज उनके पास था, और ध्यान दीजिएगा उनके पास यह शक्ति भी थी कि वह उस शाप को जो उन्हें प्राप्त हुआ था उसको वह निगेट कर देते, खत्म कर देते, लेकिन फिर भी वो नहीं किए और श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं। और वो भी उस समय जब वो मरने वाले थे, उस समय जब पूरे जगत को छोड़ दिए थे, श्रीमद् भागवतम को नहीं छोड़ पाया था। ये सब मैं रहस्य उद्घाटन नहीं करना चाहता हूँ, चौथे अध्याय में बहुत सुंदर तरह से टीकाओं में आप सीखेंगे उसको, तो ये बड़ा उपाध्याय है। श्रीमद् भागवत में अभी एक और सबसे बड़ी बात, प्रभुपाद जी अपनी नींद छोड़ करके, है कि नहीं, नींद कितनी प्रिय होती है सबको, रोज 1 से 4, 3 घंटा, अभी उस टाइम तो हम प्राय जप करेंगे ना, जप करने का बढ़िया समय है, लेकिन प्रभुपाद जी उस समय श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किए, इतना व्यस्तता होते हुए भी, तो कुछ कारण रहा होगा ना। तभी तो भोजन प्रभु कह रहे थे कि प्रभुपाद जी ऐसे ही इंग्लिश में बोले थे, ही डिड नॉट फील हिमसेल्फ फिट टू गो टू अमेरिका बिफोर ही ट्रांसलेटेड श्रीमद् भागवतम। तो प्रभुपाद जी कितना आग्रह के संग श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखे हैं, है कि नहीं। तो कुछ कारण रहा होगा ना कि ऐसे ही छापने के लिए लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है कि महान लोगों ने इसका आश्रय लिया है तो उससे उनको लाभ हुआ है और हमें भी करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। जैसे कल हम लोग वृद्धाश्रम के बारे में सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी घटना हुई। एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम कैसे इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए वृत्तासुर की प्रार्थना एक छोटा सा प्रश्न है, क्या किसी अन्य पुराण में भी है? नहीं है, नहीं है। वर्णन जरूर हो सकता है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम कौन सा पुराण है जिसमें श्री वृत्तासुर की प्रार्थना है? बड़ा विशिष्ट रूप से इसे तो हम यही समझेंगे कि वृत्तासुर की प्रार्थना और किसी में नहीं। और जब उसकी चर्चा हो रही थी, जब भक्त सुन रहे थे आचार्यगणों की टीका इत्यादि उसके ऊपर, तो एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके उत्तर में ही उसका प्रश्न, सॉरी उसके प्रश्न में ही उसका उत्तर फंसा हुआ है। आप आज वृत्तासुर के बारे में सुन रहे हो तो आप इच्छा कर रहे हो कि काश मैं भी ऐसा भक्त बन सकूं, और यही उद्देश्य श्रीमद् भागवतम का। भक्तों का चरित्र सुन करके, भगवान का चरित्र सुन करके हमारे अंदर इच्छा आती है कि हम भी इस प्रकार के डिवोटी बने। और जब सुनेंगे ही नहीं वृत्तासुर के लिए तो कहेंगे हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं, हमारा मन शांत करने के लिए, हमारा मन में कुछ परेशानी होती है, हरे कृष्ण करते हमारा मन शांत हो जाता है। और ये भी किस तरह है हरिनाम करने का, पाप काट ले जाते हैं, मैं बहुत पापी हूं तो मैं हरिनाम कर रहा हूं उसे, ये हो सकता है। लेकिन बहुत उच्च कोटि के भक्तों की प्रार्थना सुन करके, उसको सराहना करके हमारे हृदय में भी तो इच्छा आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और कब हुआ इसको, तो आप ये कब हुआ इस पर विचार मत कीजिए, क्या हुआ ये महत्वपूर्ण है। कई बार लोग इसी उलझन में पड़ जाते हैं, ये घटना कब हुई, वृत्तासुर जी ने कब झगड़ा हुआ उनका इंद्र से, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण, कब हुआ खास महत्वपूर्ण नहीं। इन इतिहासों की और इन सभी का संबंध भगवान की लीलाओं से है, ठीक है ना। जैसे इवन वृत्तासुर प्रार्थना कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जो कुछ भी है उसका संबंध भगवान की लीला से है। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। स्पष्ट है श्रील व्यासदेव परम विद्वान है, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना ये तो हम टीका में देख लेते हैं उसको, इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई। मलाई ठीक है, मलाई है, लेकिन एक्चुअली मक्खन की बात हो रही है, मक्खन की बात हो रही है। मलाई कभी कभी अच्छी नहीं लगती है, एटलीस्ट मेरे को मलाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन लेकिन मक्खन वाला बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो जिन लोगों को मलाई अच्छी लगती है वो मलाई ग्रहण करेंगे, और जिनको मक्खन अच्छा लगता है वो मक्खन ग्रहण करेंगे। ठीक, एक्चुअली उसमें लिखा है क्रीम, प्रभु इंग्लिश में मुझे याद आ रहा है क्रीम, क्रीम 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 और मलाई थोड़ी अलग है। ठीक है, जो भी रहो इस पे कोई ज्यादा वो नहीं है, सार वस्तु को बोला जा रहा है। वैदिक वांग्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो, क्षीर सागर मतलब दूध का सागर। ठीक है, और प्रभात सुंदर तरह से समझा रहे हैं, जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, नवनीत मतलब मक्खन, हाँ, उसी तरह यह श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, भक्तमाल होना चाहिए, भक्तों के चरित्र सुनना चाहिए, लेकिन वो चरित्र प्रामाणिक होना चाहिए, कुछ का कुछ नहीं सुनना चाहिए। तो हमारे पास प्रामाणिक ग्रंथ है, अगर हमें भक्तों के बारे में सुनना है श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। इसमें बहुत सुंदर बात है, अगर आप विचार करें ये वैदिक वांग्मय को क्षीर सागर से क्यों उपमा दी जा रही है, क्योंकि विस्तार ही नहीं, हाँ वेद बहुत विस्तार है, वेद उपनिषद और क्या क्या, और उसका अर्थ समझना भी बड़ा कठिन है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सागर की तरह गंभीर अर्थ है वेद का, समझ नहीं पाते तो उसको उसको अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब क्षीर सागर को मथा गया तो मक्खन ऊपर आ, मतलब मक्खन मतलब ऊपर आ जाता है और बाकी वस्तु नीचे रह जाती है, मक्खन ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार से ऊपर आ जाता है मतलब उसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, बाकी वस्तु को हम छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम वेद रूपी क्षीर सागर में को मथा गया तो ये मक्खन ऊपर आ गया, प्रकट है, इसको ग्रहण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, कहां गए हम लोग, हाँ प्रमाणिक विवरण मिलता है, प्रमाणिक विवरण मिलता है, बहुत सुंदर है। अभी आप लोग देखिएगा कैसे भगवान कृष्ण जब, अभी का मतलब काफी समय लगेगा, लेकिन जब द्वारका जाते हैं तो द्वारका के वासी किस प्रकार से भगवान को देख के प्रसन्न होते हैं, किसे उनका आग्रह है, कैसे भगवान जब वहां पे शंख बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जो शंख की उपमा दी जा रही है हंस से, हंस से, और भगवान के जो होठ हैं उसकी लालिमा जो है शंख, उसमें शंख पे जा रही है। तो काव्यात्मक रूप से भी इतना सुंदर है कि कोई इसका मतलब कोई इसका बराबरी नहीं है इस प्रकार से। ठीक है, किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए तो जन सामान्य के लिए भागवत का, सॉरी जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। तो ये बात क्यों बोली जा रही है, परंपरा में ग्रहण करना चाहिए। किसी को भागवतम का प्रवचन करके अगर भरण पोषण के उद्देश्य कर रहा है तो उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्या प्रमाण है, कारिता कर्ण लोभेना कथा सारम तत्वगतः, ये पद्म पुराण से भागवत महात्म में नारद जी ही बोलते हैं कि जो व्यक्ति कर्ण के लोभ से, कर्ण मतलब अन्न इत्यादि के लोभ से या धन इत्यादि के लोभ से कथा करता है तो उसे कथा की सार वस्तु चली जाती है, मक्खन से घी निकल जाता है, ऐसा कैसे है वो प्रपाद ही बोलेंगे। ठीक है, श्रील सुखदेव कुछ कहना चाह रहे थे, इसमें कुछ गिराहट हो रही है, पता नहीं आप बोलिए मैं रिपीट कर दूंगा। कोई मर जाता है किसी के घर में, नहीं किसी के घर में कोई मर जाता है वो कथा कराना चाहता है, ये गलत तो नहीं है, क्योंकि हम लोग ने सुना था धुंधुकारी मर गया था और वो प्रेत योनि में था तो उसके उद्धार के लिए गोकर्ण जी ने कथा करी, वह कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, कथा करने वाले का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि मुझे से पैसा मिलेगा, वो दान अगर कोई दे रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन देखिए ब्राह्मण दान स्वीकार कर सकता है लेकिन फीस स्वीकार नहीं कर सकता है। फीस और दान में अंतर समझते हैं, इतना तो देना ही पड़ेगा तब हम बोलेंगे। महाराज कितनी बार कटाक्ष करते हैं, वो सत्यनारायण की कथा होती है, कहते हैं गांव में सत्यनारायण की कथा होगी, पंडित जी बोलते हैं बहुत फास्ट, वो भी संस्कृत में, और जो स्त्रियां होती हैं वो जमीन पे रेखा मारती रहती हैं कि हाँ ये अध्याय पूर्ण हो गया, और प्राय सोती रहती हैं। तो न तो सुनने वालों की कोई इच्छा है सुनने की और न बोलने वालों कोई इच्छा, हाँ शंख जब कब बजेगा, मैंने सुना तो नहीं लेकिन ऐसा होता होगा, सत्यनारायण की कथा सुने? अच्छा हाँ, जय होती है उससे किसी को कोई लाभ नहीं होता। तो ये मुख्य बात है, ये मतलब उधार के लिए किया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य धन नहीं होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए उनकी। श्रीला सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था, उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था, देयर इज नो अल्टीरियर मोटिवेशन। ठीक है, प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर वक्तव्य है कि तुम किसी को भी पैसे पे रख सकते हो मंदिर में, लेकिन प्रचारकों को पैसे के लिए मत रखना, प्रचार पैसे के लिए नहीं होना चाहिए, अगर प्रचार पैसे के लिए हुआ सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। देखिए मैं एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूँ, कभी कभी भक्त लोग हमें कीर्तन के लिए बुलाते हैं, बहुत रेयरली हम लोग जाते हैं, और मेरे की अपेक्षा नहीं होती है कि हमें कोई धन दें या कुछ दें। एक दिन एक भक्त ने कहा, उस भक्त ने आपको बुलाया है वहां पे चले जाएगा कीर्तन के लिए, प्रसाद के लिए? मैंने कहा ठीक है चले जाएंगे, और वो दक्षिणा देगा, बस वो पूरे कीर्तन में मेरे मन में मेरा भौतिक मन बोलता रहा कितना दक्षिणा देगा, मैं इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया, पूरा कीर्तन का भाव ही खराब हो गया, जबकि मैं कभी ऐसा सोचता नहीं, कभी नहीं, चाहे 5 रुपए भी ना दे, चाहे कुछ खिलाए भी नहीं, कीर्तन हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें पैसे देगा, मुझे बहुत खराब लगा। मैंने कहा उसने बोला ही क्यों मेरे को, ये बहुत खराब है। एक कहा कि हम लोग, मैं शब्द यूज नहीं करना चाहते, हम वैश्यत हो ना साधु, इस प्रकार से साधु लोग भक्ति करने के लिए जाते हैं, भक्ति करते कीर्तन करते उनका उद्धार हो, इसलिए तो ना कि वो पैसे देगा दक्षिणा देगा, दे या ना दे से क्या मतलब। तो प्रचारक जो है वह कभी भी पैसे के लिए प्रचार ना करे, क्योंकि पैसे के लिए करेंगे वे तो कभी सत्य नहीं बोल सकेंगे, कभी सत्य नहीं बोल पाएंगे। हम सब लोगों का बड़ा भाग्य है ब्रह्मचारियों का, रोटी पाने की व्यवस्था मंदिर कर दे रहा है कि नहीं, तो हम लोग प्रचार कर सकते हैं बिना पैसे के, हमें सोचना नहीं कि अब ये कथा करेंगे तो उससे प्रोजेक्ट को कितने पैसे प्राप्त होंगे, ये सब नहीं, एकदम आप देखना धीरे धीरे आप खुद बोलेंगे ना कोई सुख नहीं मिलेगा, आपको बोलने में कोई सुख नहीं मिलेगा, ये सोचते रहेंगे कितना पैसा मिलेगा इस कथा से। कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कहीं कहीं नोटिस बोर्ड में लगा रहता है संकीर्तन के लिए कथा के लिए संपर्क करें, कथा के लिए संपर्क करें मतलब वो धन प्राप्ति करना चाहते ना, सब नहीं होना चाहिए। इसको आप लोग कृपया 3.33.7 में पढ़िएगा, नामोच्चारण करते समय धन के लिए नहीं करना है और मायावादी उद्देश्य नहीं करना है, अगर ये दो अपराध से बचते हैं तो केवल जीभ से उच्चारण करने से हम परफेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया है? क्या दो अपराध से बचना है? पैसे के लिए नहीं करना ये, और दूसरा मायावाद की, भाई हम नाम उच्चारण करके भागवत पढ़ करके भगवान बन जाएंगे, इस दो अपराध से बचें। आप केवल बोल रहे हैं भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, परफेक्ट हो जाएंगे। अब कई बार हम इसको हम बोल चुके हैं, आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए श्रीमद भागवतम को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो। संन्यास आश्रम में हो मतलब भगवान का भक्त है, अब इसका मतलब नहीं संन्यासी से ही सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। संन्यास करता जानते हैं सम्यक न्यास, जो भगवान के प्रति मनसा वाचा कर्मणा समर्पित है, और जिस पर परिवार का बोझ ना हो, परिवार नहीं चलाना उसको भागवत से। अब इसका अर्थ है क्या, यह अर्थ है कि हम गृहस्थ से नहीं सुन सकते? नहीं, गृहस्थ सुन सकते हैं, लेकिन गृहस्थ भागवत इसलिए ना करे कि पैसा कमाना है। मेक सेंस? दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, अभी दशरथी प्रभु जो बता रहे थे वही एग्जाम्पल दे रहे हैं, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। समझने से अर्थ क्या है? देखिए, जिसकी चेतना इस भोगमय चेतना के द्वारा उसने स्पर्श किया है उसको, ये जो सर्प वाला बात बोल रहे हैं मतलब समझ रहे हैं इसका, उसकी वो दो मिस्टेक, ये पैसे के लिए चाहिए, पैसे के लिए कर रहा हूं, या फिर भगवान बनना है, तो ये जो दूषित चेतना है वह उस कथा में मिश्रित रहेगी, और इस कारण से लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए लोग इस्कॉन से डरते हैं, क्योंकि इस्कॉन के भक्त निस्वार्थ भाव से प्रचार करते हैं और उसका प्रभाव लोगों के जीवन में होता है, उनको 70 लड़का ज्वाइन कर ले। मेरे पिताजी, मैं घर गया था तो मेरा स्टूडेंट वहां पे आया था, तो मेरे पिताजी उसको समझाने लगे, अरे ये तो पागल हो ही गया है, तुमको भी पागल कर देगा ऐसे करके। तो ये वह एक्चुअली निंदा नहीं कर रहे थे, वो गुणगान कर रहे थे कि भक्ति का प्रोसेस वाकई कार्य करता है, मतलब वह तो निंदा करना चाह रहे थे लेकिन उनके मुख से एक्चुअली गुणगान हो रहा है। आप ही देखो कि लोग कृष्ण भक्ति करें ना घर में तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लड्डू गोपाल रखते हैं घर में, लोग पूजा करते हैं, लेकिन अगर इस्कॉन डिवोटी के संग मिलने लग गए तो बहुत कठिन होगा। मुझे आज बहुत विनोद की बात है, भरतपुर में हम प्रीचिंग करने जाते हैं, हमारे बहुत अच्छे डिवोटी हैं, वो बाहर रहते हैं भरतपुर के, घर उनका भरतपुर में, तो उस दिन वो आए थे और अपनी पत्नी को भी लेके आए। तो पत्नी बैठी बड़ी क्लास में, बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रही थी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे लग रहा है बड़ा खुश हुई, मतलब बड़ा अच्छा लगा उसको सुन करके कथा होता। तो बाद में बोली, मैं प्रभु जी कुछ बात कहना चाहती हूँ, तो पति भी साथ में था, तो बोली, प्रभु जी ये हरे कृष्णा करें कोई दिक्कत नहीं है, हम प्याज लहसुन नहीं बनाएंगे, भोग लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका प्रवचन ना सुने। चुपचाप वो प्रवचन इंटरनेट पर सुनता था। तो क्योंकि उसको लग रहा था कि थोड़ा ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तो मुझे बड़ा, मैंने कहा यह भी निंदा नहीं कर रही है, बड़े क्रोध में थी वो, यह भी गुणगान कर रही है, मुझे विश्वास वगैरह नहीं, अब तो मैं और प्रीचिंग करूंगा, नहीं रुकूंगा मैं, है ना। ये बात है, और जो गुरुजनों से सुना है, परंपरा से प्राप्त है, वह प्रस्तुत करेंगे तो लोगों के जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसी तरह हाँ, तो कह रहे हैं ये पोषक नहीं रह जाता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। मतलब भागवत सुन के वैराग्य होना चाहिए, होने लगा भोग की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए और ना अनेक अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। ये बड़े कठिन हो जाता है कि जब लोगों को इस प्रकार की संगीतमय कथा का अभ्यास हो जाता है तो फिर वो प्रामाणिक रूप से सुनते हैं तो उसको हजम नहीं कर पाते। महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, अब कुछ कंप्लेन आ रही है कि अभी तक रुक्मणी का विवाह नहीं हुआ है। तो समझ रहे हैं महाराज, कोई उस व्यक्ति को ये भी पता नहीं है कि महाराज जी परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक प्रसंग ले रहे हैं जिसमें रुक्मणी का विवाह नहीं आएगा। मान लीजिए अजामिल का प्रसंग ले रहे हैं तो उसमें रुक्मणी का विवाह कैसे आ जाएगा। तो वो व्यक्ति सोच रहा है, अरे इतने दिन हो गए अब तक रुक्मणी का विवाह नहीं हुआ, बाल गोपाल का अवतरण नहीं हुआ। तो इस प्रकार से लोगों की आदत बन गई भाई ऐसे सुनना है, तो इतने मतलब तमोगुण में है लोग, ऐसे कहना चाहिए। नहीं समझ पाते कुछ, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसका दूसरा ना, वी हैव टू चेंज इट और अदरवाइज वी कैन इंस्टॉल द कॉर्डलेस फन। वो माइक भक्त कुछ बोलना चाहते तो बोल नहीं पा रहे, ठीक है। आध्यात्मिक मृत्यु कारण बन जाएगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें यानी कृष्ण को जानना है और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण ही है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। अतः यह समस्त वेदों का नवनीत मतलब मक्खन है, सार है, और इसमें श्री कृष्ण संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हुए हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। क्यों? इतिहास वही सुनना चाहिए जिसमें कृष्ण कथा सम्मिलित हो। कोई प्रश्न है किसी का तो मैं ले सकता हूँ। ओके, सो शुड स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है? ओके, श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।